भूमिका। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके संबंध में विद्वानों ने अनेक प्रकार के मत प्रकट किए हैं। कुछ लोग इसे एकदम अप्रामाणिक रचना मानते हैं और कुछ लोग पूर्ण रूप से तो नहीं पर आंशिक रूप से इसे प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। इस विचार के लोगों का विश्वास है कि चंद नाम का कोई कवि सचमुच ही पृथ्वीराज के काल में उत्पन्न हुआ था और उसने सचमुच ही कोई काव्य लिखा था जो अब प्रक्षेपों से स्फीत और विकृत हो गया है। प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद प्रधान रूप से इस प्रश्न पर केंद्रित है कि सचमुच ही पृथ्वीराज का समकालीन और सखा कोई चंद नामक कवि था भी या नहीं। पृथ्वीराज रासो की घटनाओं को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने वालों ने प्रायः निश्चित रूप से ही कह दिया है कि यह बात संभव नहीं दिखती। समकालीन कवि कभी ऐसी उलझुल बातें नहीं लिखा करते। जो लोग पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिक रचना समझते हैं वे उन घटनाओं की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक आलोचक ग्रंथागत घटनाओं की ऐतिहासिकता की जांच में ही अपनी सारी शक्ति लगा देता है। अभी तक ग्रंथ की साहित्यिक महिमा के समझने का प्रयत्न बहुत कम किया गया है। फिर भी पृथ्वीराज रासो के साहित्यिक महत्व को अनुभव किया जाता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी उच्चतर कक्षाओं में रासो का कुछ अंश जो अत्यंत नगण्य हुआ करता है पाठ्यक्रम में रखा करता है। इन अंशों से रासो की महिमा का बहुत मामूली परिचय ही मिल पाता है। पृथ्वीराज रासो इतना विशाल ग्रंथ है कि उसका संक्षिप्त रूप प्रकाशित करना भी कठिन कार्य ही है। परंतु प्रत्येक विचारशील अध्यापक यह अनुभव करता है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो अंश पढ़ाए जाते हैं वे रासो का ठीक ठीक परिचय नहीं दे सकते। संक्षिप्त करने में बहुत कठिनाइयाँ भी हैं, किस अंश को लिया जाए किस अंश को छोड़ दिया जाए। गत मार्च बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने मुझे हिंदी साहित्य के आदिकाल पर कुछ व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर रासो के संबंध में अपने विचार प्रकट करने का अवसर मुझे मिला। बहुत दिनों से मेरे मन में रासो की प्रामाणिकता के संबंध में एक अस्पष्ट धारणा रही है। मैं उन विद्वानों के मत को ही अपना मत मानता रहा हूँ जो स्वीकार करते हैं कि रासो में कुछ न कुछ चंद की प्रामाणिक रचनाएं हैं अवश्य। पुरातन प्रबंध संग्रह में कुछ छप्पयों के प्राप्त हो जाने से यह मत और भी विश्वास योग्य हो गया है। जब मुनि जिन विजय जी शांति निकेतन में थे उनकी कृपा से मुझे कई जैन प्रबंधों को हिंदी में भाषांतरित करने का सुयोग प्राप्त हुआ था। उनमें से एक का भाषांतर सिंधी जैन ग्रंथमाला में प्रकाशित भी हो चुका है, बाकी अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। उस समय मुझे पुरातन प्रबंध संग्रहों को भी भाषांतरित करने का अवसर मिला था, तभी से मेरे मन में रासो के मूल रूप के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के व्याख्यानों में मैंने अपने विचारों को विद्वानों के सामने रख दिया। अभी भी उस पर पंडितों की प्रतिक्रिया नहीं मालूम हो सकी। उस व्याख्यान में मैंने रासों के मूल प्रामाणिक अंग माने जाने योग्य अंशों की ओर संकेत किया था। प्रस्तुत संक्षिप्त रासो उन्हीं विचारों पर आधारित है। केवल उन्हीं अंशों को संक्षिप्त किया गया है जिनकी प्राचीनता उन व्याख्यानों में प्रमाणित की गई है। यथासंभव इस बात का भी ध्यान दिया गया है कि विद्यार्थियों को रासो की पूरी साहित्यिक महिमा का परिचय मिल जाए। मेरे विचार विस्तार से तो हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक में आ गए हैं, परंतु संक्षेप में उनका उल्लेख यहाँ कर दिया जा रहा है। काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो में 2500 पृष्ठ हैं जो 69 सर्गों में विभाजित है। सबसे बड़ा समय कर्णवज्र युद्ध है जो संभवतः रासो का मूल कथानक है। यह विश्वास किया जाता है कि चंद्र पृथ्वीराज का मित्र कवि और सलाहकार था। रासो में वह तीनों रूपों में चित्रित है। इस ग्रंथ के अनुसार दोनों के जन्म और मरण की तिथि भी एक है। इस प्रकार सदा साथ रहने वाले अभिन्न मित्र की रचना निश्चय बहुत प्रामाणिक होनी चाहिए। यही सोचकर सुप्रसिद्ध विद्वत सभा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आरंभ किया था। कुछ थोड़ा सा अंश प्रकाशित भी हो चुका था, किंतु इसी समय डॉक्टर वूलर जो पृथ्वीराज विजय की एक खंडित प्रति हाथ लगी। उस पुस्तक की परीक्षा करने के बाद डॉक्टर बूलर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पृथ्वीराज विजय इतिहास की दृष्टि से अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है और पृथ्वीराज राजस्व अत्यंत अप्रमाणिक, क्योंकि पृथ्वीराजकालीन अभिलेखों से पृथ्वीराज विजय में वर्णित घटनाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन पृथ्वीराज राजस्व में वर्णित घटनाएं नहीं मिलती। उनका पत्र सोसाइटी के प्रेसिडिंग्स में छापा गया और पृथ्वीराज राजस्व का प्रकाशन बंद कर दिया गया। उन दिनों यूरोपियन विद्वान मध्य देश की रचनाओं का महत्व दो दृष्टियों से आंकते थे। ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने और भाषा शास्त्रीय समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से राजस्व से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता था। कितनी ही ऐसी अनमिल बातें इस पुस्तक में मिली जो इसके ऐतिहासिक रूप को निर्विवाद रूप से गलत साबित करती थी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज सोमेश्वर और कर्पूर देवी के पुत्र थे। कर्पूर देवी चेरी नरेश की कन्या थी। जब पुत्र पृथ्वीराज नाबालिग था तो माता ने कदम्बवास नामक मंत्री की सहायता से राज्य संचालन किया था। यह बात अभिलेखों से मिलती है। इधर पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार यह दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री के लड़के थे। मजेदार बात यह कि पृथ्वीराज विजय में चंद्रबरदाई नामक किसी कवि का नाम नहीं है। एक जगह चंद्रराज कवि का उल्लेख अवश्य है, परंतु उसे कुछ विद्वानों ने कश्मीरी कवि चंद्रक से अभिन्न माना है। दूसरी भी बहुत सी ऐतिहासिक बातें राजस्व में मिलती हैं। 7वीं-8वीं शताब्दी में देश में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर काव्य लिखने की प्रथा खूब चली। इन्हीं दिनों ईरान के साहित्य में भी इस प्रथा का प्रवेश हुआ। इस काल में उत्तर पश्चिम सीमांत से बहुत सी जातियों का प्रवेश इस देश में होता रहा। वे राज्य स्थापन करने में भी समर्थ हुई। पता नहीं कि उन जातियों की स्वदेशी प्रथा की क्या क्या बातें इस देश में चली। साहित्य में नए नए काव्य रूपों का प्रवेश इस काल में अवश्य हुआ। संभवतः ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर काव्य लिखने या लिखाने का चलन भी उनके संसर्ग का फल हो। परंतु भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम भर लिया। शैली उनकी वही पुरानी रही जिसमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम। कल्पना विलास का अधिक मान था, तथ्य निरूपण का कम। संभावनाओं की ओर अधिक रुचि थी, घटना की ओर कम। उल्लसित आनंद की ओर अधिक झुकाव था, विलसित तथ्यावली की ओर कम। इस प्रकार इतिहास को कल्पना के हाथों परास्त होना पड़ा। ऐतिहासिक तथ्य इन कार्यों में काव्यों में कल्पना को उकसा देने के साधन मान दिए गए हैं। राजा का विवाह, शत्रु विजय, जल क्रीड़ा, शैलवन विहार, ढोला विलास, नृत्य गान, प्रीति, ये सब बातें ही प्रमुख हो उठी हैं। बाद में क्रमशः इतिहास का अंश कम होता गया और संभावनाओं का जोर बढ़ता गया। राजा के शत्रु होते हैं, उनसे युद्ध होता है। इतिहास की दृष्टि में एक युद्ध हुआ और भी तो हो सकते थे, कभी संभावना को देखेगा। राजा के एकाधिक विवाह होते थे, ये तथ्य अनेक विवाहों की संभावना उत्पन्न करता है। जल क्रीड़ा और वन विहार की संभावना की ओर संकेत करता है और कवि को अपनी कल्पना का पंख खोल देने का अवसर देता है। उत्तरकाल के ऐतिहासिक काव्यों में इसकी भरमार है। ऐतिहासिक विद्वान के लिए संगति मिलाना कठिन हो जाता है। वस्तुतः इस देश में इतिहास को ठीक आधुनिक अर्थ में कभी नहीं लिया गया। बराबर ही ऐतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक या काल्पनिक कथा नायक जैसा बना देने की प्रवृत्ति रही है। कुछ में दैवी शक्ति का आरोप करके पौराणिक बना दिया गया है, जैसे राम, बुद्ध, कृष्ण आदि, और कुछ में काल्पनिक रोमांस का आरोप करके निजंधरी कथाओं का आश्रय बना दिया गया है, जैसे उदयन, विक्रमादित्य और हाल। जायसी के रतन सेन, राजस्व के पृथ्वीराज में तथ्य और कल्पना का, फैक्टस और फिक्शन का अद्भुत योग हुआ है। कर्मफल की अनिवार्यता में दुर्भाग्य और सौभाग्य की अद्भुत शक्ति में और मनुष्य के अपूर्व शक्ति भंडार होने में दृढ़ विश्वास ने इस देश के ऐतिहासिक तथ्यों को सदा काल्पनिक रंग में रंगा है। यही कारण है कि जब ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी चरित्र लिखा जाने लगा तब भी इतिहास का कार्य नहीं हुआ। अंत तक ये रचनाएं काव्य ही बन सकी, इतिहास नहीं। फिर भी निजंधरी कथाओं से वे इस अर्थ में भिन्न थीं कि उनमें बाह्य तथ्यात्मक जगत से कुछ न कुछ योग अवश्य रहता था। कभी कभी मात्रा में कमी बेशी तो हुआ करती थी, पर योग रहता था, अवश्य था। निजंधरी कथाएं अपने आप में ही परिपूर्ण होती थी। जिस प्रकार भारतीय कवि काल्पनिक कथाओं में ऐसी घटनाओं को नहीं आने देता जो दुखपरक विरोधों को उकसावे, उसी प्रकार वह ऐतिहासिक कथानकों में भी करता है। सिद्धांततः काव्य में उस वस्तु का आना भारतीय कवि उचित नहीं समझता जो तथ्य और औचित्य की संभावनाओं में विरोध उत्पन्न करे। दुखोद्रेचक विषय परिस्थितियों ट्रैजिक कंट्रडिक्शंस की सृष्टि करे, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसी बातें होती ही रहती है। इसलिए इतिहास आश्रित काव्य में भी ऐसी बातें आएंगी ही। बहुत कम कवियों ने ऐसी घटनाओं की अपेक्षा कर जाने की बुद्धि से अपने को मुक्त रखा है। यही कारण है कि इन ऐतिहासिक काव्यों के नायकों को धीरोदात्त बनाने की प्रवृत्ति ही प्रबल हो गई है। परंतु वास्तविक जीवन के कर्तव्य, द्वंद्व, आत्मविरोध और आत्म प्रतिरोध जैसी बातें उसमें नहीं आ पाती। ऐसी बातों के न आने से इतिहास का रस भी नहीं आ पाता और कथानक कल्पित पात्र की कोटि में आ जाता है। फिर जीवन में कभी हास्योद्रेचक अनमूल्य स्वर भी मिल जाते हैं। संस्कृत काव्य का कर्ता कुछ अधिक गंभीर रहने में विश्वास करता है और ऐसे प्रसंगों को छोड़ देता है। ऐसे प्रसंगों को तो वह भरसक नहीं आने देना चाहता जहाँ कथानक के नैतिक पतन की सूचना मिलने की आशंका हो। यदि ऐसे प्रसंगों की वह अवतारणा भी करता है तो घटनाओं और परिस्थितियों का ऐसा जाल तानता है जिसमें नायक का कर्तव्य उचित रूप से प्रतिभाषित हो। सब मिलाकर ऐतिहासिक काव्य काल्पनिक निजंधरी कथानकों पर आश्रित काव्य से बहुत भिन्न नहीं होते। उनसे आप इतिहास के शोध की सामग्री संग्रह कर सकते हैं, पर इतिहास को नहीं पा सकते। इतिहास जो जीवंत मनुष्य के विकास की जीवन कथा होता है, जो काल प्रवाह से नित्य उद्घाटित होते रहने वाली नव नव घटनाओं और परिस्थितियों के भीतर से मनुष्य की विजय यात्रा का चित्र उपस्थित करता है और जो काल के पर्दे पर प्रतिफलित होने वाले नए नए दृश्यों को हमारे सामने सहज भाव से उद्घाटित करता रहता है। भारतीय कवि इतिहास प्रसिद्ध पात्र को भी निजंधरी कथानकों की ऊंचाई तक ले जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह कुछ कथानक रूढ़ियों का प्रयोग करता है जो कथानक को अभिलषित दिशा में मोड़ देने के लिए दीर्घकाल से प्रचलित है। इनसे कथानक में सरसता आती है और घटना प्रवाह में एक प्रकार की लोच आ जाती है। अस्त जहां तक रासों की ऐतिहासिकता का संबंध है, डॉक्टर बुलर, भारिसन, डी ओझा, मुंशी देवदास जी आदि प्रमाणिक इतिहास लेखकों ने इसे अविश्वसनीय सिद्ध कर दिया है। अब इसकी लिखित घटनाओं को ऐतिहासिक सिद्ध करने का प्रयत्न बंद कर देना ही उचित है, किंतु फिर भी रासों का महत्व है। बहुत दिनों तक विद्वानों में यह विश्वास था कि यद्यपि रासों में प्रक्षिप्त अंश बहुत है, तथापि इसमें चंद के कुछ न कुछ वचन अवश्य हैं जो काफ़ी पुराने हैं। अब तक यही विश्वास किया जाता रहा है कि प्रक्षेपों के समुद्र में से मूल कविताओं के मोती चुन लेना असंभव ही है। इधर हाल में मुनि जिन विजय जी ने पुरातन प्रबंध संग्रह में जयचंद प्रबंध नामक एक प्रबंध प्रकाशित किया, जिसमें चंद के नाम से चार छप्पे दिए हैं। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक अभ्रंश के निकट की भाषा है, यद्यपि उनमें कुछ चिन्ह ऐसे भी मिलते हैं जिनसे यह अनुमान कर सकते हैं कि संदेश राशक की भाषा के सदृश यह भाषा भी कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा है। जिस प्रति से यह छप्पा उद्धृत किए गए हैं वह संभवतः 15वीं शताब्दी की लिखी हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि 15वीं शताब्दी में लोगों को चंद के छप्पे का ज्ञान था और यह छप्पे परिनिष्ठित अभ्रंश से थोड़ी आगे बड़ी भाषा में लिखे गए थे। इन पद्यों के प्रकाशन के बाद से अब इस विषय में किसी को संदेह नहीं रह गया है कि चंद नामक कोई कवि पृथ्वीराज के दरबार में अवश्य थे और उन्होंने ग्रंथ भी लिखा है। सौभाग्यवश वर्तमान रासों में भी वे छंद कुछ विकृत रूप में प्राप्त हो गए हैं। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वर्तमान रासों में चंद के मूल छंद अवश्य मिले हुए हैं। पृथ्वीराज रासों का अध्ययन करने के बाद और 9वीं-10वीं शताब्दी में प्रचलित कथाओं के लक्षण और काव्य रूपों को ध्यान से रखकर देखने से ऐसा लगता है कि यद्यपि चंद के मूल वचनों की खोज लेना अब भी कठिन है, किंतु उसमें क्या क्या वस्तुएं थीं और कौन कौन सी कक्षाएं थीं, कथाएं थीं, इस बात का पता लगा लेना उतना कठिन नहीं है। उन दिनों की कथाएं दो व्यक्तियों के संवाद रूप में लिखी जाती थी। चंद ने विरासों को सुख और सुखी के संवाद में लिखा था, जैसे विद्यापति ने कीर्तिलता को भृंग और भृंगी के संवाद रूप में लिखा था, और कौतूहल कवि ने लीलावती कथा को कवि और कवि पत्नी के संवाद के रूप में लिखा था। इस चंद्र भरदाई का यह काव्य रासक भी है, जो गद्य काव्य हुआ करता था उसमें मृदु और उद्धत प्रयोग हुआ करते थे। संदेश रासक में जिस प्रकार कवि ने अपनी नम्रता प्रकट करते हुए कहा है कि बड़े बड़े कवियों की रचनाएं उपलब्ध हैं, तो क्या छोटे कवि अपनी रचनाओं से आनंदित न हो, उसी प्रकार और उसी शैली में पृथ्वीराज रासो में भी यह बात कही गई है। इतना ही नहीं, एक दो प्राकृत गाथाएं तो रासो में भी प्रायः वही हैं जो संदेश रासक में हैं। फिर संदेश रासक में बीच बीच में कवि सूचना देता है कि अमुक पात्र ने अमुक छंद में अपनी बात कही है, उसी प्रकार पृथ्वीराज रासो में भी बीच बीच में कह दिया गया है कि अमुक पात्र ने अमुक छंद में अपनी बात कही। इन सब बातों पर विचार करने से ऐसा जान पड़ता है कि चंद ने भी अपभ्रंश के रासकों की शैली पर ही अपना रासो लिखा। संदेश रासक में लगभग एक तिहाई पद्य रासक छंदों में, पृथ्वीराज रासो में रासक छंद बहुत कम व्यवहारित हुआ है, पर संदेश रासक से तो यह सिद्ध हो ही जाता है कि रासक ग्रंथों में दूसरे छंदों का विशेषकर दोहा और गाथा का प्रचुर प्रयोग होता था। वीरस की प्रधानता होने के कारण चंद ने 56 छंदों का प्रयोग अधिक किया था। इस दृष्टि से विचार करने पर रासों के निम्नलिखित प्रसंग प्रमाणिक जान पड़ते हैं। आरंभिक अंश, इच्छिनी विवाह, शशिव्रता का गंधर्व विवाह, तोमर पहाड़ का शहाबुद्दीन को पकड़ना, संयोगिता का जन्म विवाह तथा इच्छिनी और संयोगिता की प्रतिबद्धता और समझौता। इन अंशों की भाषा में उस प्रकार के बेडौल और बेमेल ठूस ठास नहीं है और कवित्व का सहज प्रभाव है। इसमें चंद बरदाई ऐसे सहज प्रफुल्ल कवि के रूप में दृष्टिगत होते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी जीवन रस खींचते रहते हैं। वे केवल कल्पना विलासी कवि ही नहीं, निपुण मंत्रदाता के रूप में भी सामने आते हैं। चाहे रूप और शोभा का वर्णन हो, चाहे ऋतु वर्णन की उत्फुल्लता का प्रसंग हो, या युद्ध की भेरी का प्रसंग हो, चंद्र भरदाई सर्वत्र एक समान अविचलित और प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। रूप और सौंदर्य के प्रसंग में उनकी कविता रुकना ही नहीं जानती। निसंदेह उन्होंने काव्यगत रूढ़ियों का बहुत व्यवहार किया है और परंपरा प्रचलित उपमानों से सौंदर्य की अभिव्यंजना उनके साहित्य का प्रधान कौशल है। तथापि वह कवि के आनंद निर्झर चित्र को पूर्ण रूप से प्रकट कर देंगे। कथानक रूढ़ियों की दृष्टि से तो चंद्र का काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और परवर्ती काल में जिन लोगों ने उसमें प्रक्षेप किया है वे चंद्र की इस प्रवृत्ति को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। इसीलिए प्रक्षेप करने वालों ने चुन चुन कर की कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का सन्निवेश किया है। साधारणतः भारतीय कथाओं में कथानक को अभीष्ट दिशा में मोड़ने के लिए निम्नलिखित कथानक रूढ़ियों का व्यवहार हुआ है। स्वप्न में प्रिय मूर्ति दर्शन, कहानी कहने वाला सुआ, शिकार खेलते समय घोड़े का जंगल में मार्ग भूलना, मुनि का श्राप, रूप परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, परकाया प्रवेश, आकाशवाणी, अभिज्ञान या साहिदार्य, परिचारिका का राजा से प्रेम और उसका राजकन्या रूप में अभिज्ञान, नायिका का चित्र, नायक का औदार्य, विरह वेदना, चौर्य प्रेम और फिर विवाह, नट नटी द्वारा रूप श्रवण और प्रेम, संदेशवाहक हंस या कपूत, विजन वन में सुंदरियों से साक्षात्कार, उजाड़ शहर का मिल जाना और वह नायक का राजा हो जाना, शत्रु संतापित सरदार की प्रिया को शरण देना और युद्ध मोल लेना, अति प्राकृत दृश्य से लक्ष्मी प्राप्त का शकुन इत्यादि इत्यादि। लगभग इन सभी कथानक रूढ़ियों का प्रयोग पृथ्वीराज रासो में किया गया है। प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रत्येक विवाह के समय नट का, नर्तकी का, स्वप्न दर्शन का, चित्र दर्शन का, हंस दौत्य या शुक दौत्य का उपयोग किया गया है। शशिव्रता या संयोगिता इन दोनों मुख्य रानियों को अप्सरा का अवतार बताया गया है। प्रत्येक विवाह में आगे या पीछे कुछ न कुछ युद्ध का प्रसंग अवश्य आता है और प्राचीन निजंधरी कथाओं के समान कन्याहरण प्रधान रूप से वर्णित हुआ है। शोभा चाहे प्रकृति की हो या मनुष्य की हो, परंपरा प्रचलित रूढ़ी उपमानों के सहारे ही निखरी है और अधीनस्थ सामंतों की स्वामी भक्ति और पराक्रम अत्यंत उज्जवल रूप में प्रकट हुआ है। छंदों का परिवर्तन बहुत अधिक हुआ है और कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आई। 12वीं-13वीं शती की अपभ्रंश साहित्य में छंदों का यह परिवर्तन बहुत अधिक प्रचलित हो गया था। जो छंद परिवर्तन के लिए केशव को दोषी समझते हैं, वे बहुत ऊपर से काव्य रूपों की आलोचना करते हैं। वस्तुतः केशव को रामचंद्रिका तक आते आते यह छंदो बहुला प्रथा निर्जीव और विकृत हो गई थी। अत्यधिक प्रक्षेप होते रहने के बाद भी पृथ्वीराज रासों पे यह प्रथा सजीव रूप में वर्तमान है। अनुकरण करने वालों ने भी छंद की शैली को ठीक रूप में पकड़ा है और वर्तमान रूप में भी रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। वर्तमान रासों में युद्धों का प्रसंग बहुत अधिक है और शहाबुद्दीन तो इसमें हर मौके बेमौके अनायास आ पड़ता है। अधिकतर भट्ट भड़ंत और गलत तिथियों का हिसाब ऐसे प्रसंग में ही आता है। ऐसा करने में कुछ भी संकोच मालूम नहीं पड़ता कि ये युद्धों के अनावश्यक विस्तारित वर्णन, चौहान और कमध्वज के सरदारों के नामों की सूची आदि बातें परवर्ती ठूंस-ठांस है। मूल रासो शुक और शुकी के संवाद के रूप में ही लिखा गया था और संभवतः कीर्तिलता के समान प्रत्येक समय के आरंभ में शुक और शुकी का प्रसंग उसमें भी था। इधर रासों के अनेक संक्षिप्त संस्करणों का पता लगा है और पंडितों में यह जल्पना कल्पना आरंभ हुई है कि इन्हीं छोटे संस्करणों में से कोई रासों का मूल रूप है या नहीं। अभी तक इन संस्करणों का जो कुछ विवरण देखने में आया है उससे तो ऐसा लगता है कि ये सब संस्करण रासों के संक्षिप्त रूप ही हैं। इन्हीं विचारों के अनुसार वर्तमान संक्षिप्त रूप का संकलन किया गया है। मेरा यह दावा नहीं है कि यह रासों का मूल रूप है। यह निर्णय करना अब बड़ा कठिन है कि चंद की वास्तविक रचनाएं कौन सी हैं, पर मेरा विश्वास अवश्य है कि चंद की मूल रचना कुछ इसी के आसपास होगी। विद्यार्थी को इस संक्षिप्त रूप से रासों की सभी विशेषताओं को समझने का अवसर मिलेगा और वह उस ग्रंथ की साहित्यिक महिमा के प्रति अधिक जिज्ञास और आग्रहवान होगा, इसी विश्वास से यह श्रम किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, काशी विश्वविद्यालय बनारस, अक्षय तृतीया, संवत 2009।